निश्चयी प्रेत बंधुनाम मृत राजा के मित्रों तथा संबंधियों के आश्रित्य सुनकर परिदेवितम तीव्र विलाप जो यमलोक में भी सुनाई पड़ता था आह कहा तान उन शोक संतप्त रानियों से बालक लड़के का भूत्वा होकर यम यमहा मृत्यु के अधीक्षक यमराज स्वयं उपागत आकर के अनुमत तात्पर्य श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा जब रानिया राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थी तो उनका जोर जोर का विलाप यमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। अतएव बालक का रूप धारण करके यमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। तात्पर्य, कभी कभी जीव को अपना शरीर त्याग कर यमराज जी के निर्णय के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, किंतु बद्ध जीव के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश करना तब तक संभव नहीं होता है जब तक मृत शरीर को दाह कर्म द्वारा या अन्य किसी साधन से विनिष्ट न कर दिया जाए। जीव को वर्तमान शरीर के प्रति आसक्ति होती है और वह दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहता है, अतएव तब तक वो प्रेत बनकर रहता है। यदि मरा हुआ व्यक्ति पुण्यात्मा होता है तो यमराज उसे मुक्त करने के उद्देश्य से दूसरा शरीर प्रदान करते हैं। चूंकि राजा के शरीर के जीव को उसके शरीर से आसक्ति थी, अतः वो प्रेत बनकर मंडरा रहा था और इसी से यमराज विशेष रूप से शोकमग्न संबंधियों को स्वयं उपदेश देने के लिए उनके पास गए। यमराज उनके पास बालक वेश में गए क्योंकि बालक को कहीं भी आने जाने की छूट रहती है, यहाँ तक कि वो राजमहल में भी जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह बालक दर्शन की बातें कर रहा था। जब कोई बालक दर्शन की बातें करता है तो लोग सुनने में बड़ी रुचि लेते हैं। तत्र प्रेत बंधु नाम आश्रित्य परिदेवितम आहतान बालको भूत्वा यमः स्वयं उपागत। आप मेरे पीछे दोहराएंगे, जब रानी या राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थी तो उनका जोर जोर का विलाप यमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। अतः बालक का रूप धारण करके स्वयं यमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। अमज्ञानतिमिदंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति शपदंतिकम। वंदेहम श्री गुरौ श्रीयुत पद कमलम सिगुरूर नवश्लवंच श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथन वितम तम सजीवम साद्वैतम सामदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगण ललिता विशाखन वितंश्च मुखम करोति वाचालम पंगुमलंगयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् जयतं सुरत पंगो मम मंद मतद गति मत सर्वस्व पदां भोजो श्री राधा मदन मोहन वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित्यनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निधि विशेष शून्यवादी पाश्चात देश दारी। हरे कृष्ण। इतनी ठंडी में भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वस्तु तो धन्यवाद देना चाहिए। और इसी से एक और भी बात पता चलती है कि आप लोग की रुचि श्रीमद् भागवतम श्रवण करने में वास्तव में है। और जब इस प्रकार की रुचि व्यक्ति के हृदय में श्रीमद् भागवतम के प्रति होती है तो भगवान तत्क्षण उनके हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। वस्तुतः उपदेश व्यक्ति के हृदय में तब जाता है जब श्रोताओं के हृदय में श्री भगवान उनको श्रवण की प्रेरणा प्रदान करते हैं या उनको एक तरीके से उन कठिन शब्दों को भी या कठिन वाक्यों को भी वो सरल करके व्यक्ति को समझाते हैं। अतः परमात्मा के चरणों में मैं कोटि से प्रणाम करता हूं ताकि आप इतना कष्ट लेकर के भी जो श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो उनको मेरा प्रार्थना है कि इस प्रवचन को आपके हृदयंगम कराए। सो आप लोग जानते हैं कि यहां पर जो ये विलाप चल रहा है वो विलाप राजा सुयज्ञ की पत्नियों और उनके संबंधियों के द्वारा ये विलाप हिरण्यकश्यपु सुना रहे हैं। उसका तो हिरण्यकश्यपु को यह भी पता था कि यमराज जी करके एक अथॉरिटी है ना, भले ही असुर है लेकिन उनको पता था मृत्यु के देवता कौन है ना, यमराज जी मृत्यु के देवता है। वो मृत्यु से नहीं डरता था, ये दूसरा बात है। आज के लोगों की तरह नहीं है, आज तो लोग विश्वास ही नहीं करते हैं, इतने अज्ञानी हैं, या उनके पास माया ने इतना अज्ञान छोड़ के रखा है, उनको समझाती है कि कोई ऊपर है ही नहीं, सब खाली है, कौन विश्वास करता है, ऐसा लोग बोल देते हैं। पर नहीं विश्वास करने वाले व्यक्ति बहुत घाटे में जाते हैं। तो मृत्यु के देवता के ऊपर विश्वास की बात है ना, भगवान के ऊपर विश्वास कराने के लिए यमराज जी के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के भगवान में विश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि भजन मृत्यु के डर से चलता है, और साक्षात मृत्यु के जो देवता है वो है यमराज जी। तो हिरण्यकश्यप को भी ये पता है, इसलिए अपने उन स्वजनों की सांत्वना के लिए ये किए इतिहास बता रहे, ये इतिहास है। कभी कभी रूपक के रूप में कहीं उदाहरण श्रीमद् भागवत में आते, रूपक होते हैं, जैसे महाराज प्राचीन परिषद को चंद्र जी उपदेश देते तो रूपक के रूप में दे रहे थे, है ना, लेकिन ये इतिहास है। यद्यपि रूपक भी जब साधुओं के मुख से, भगवान के भक्तों के मुख से रूपक भी दिख अगर सुना जाता है तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे रूप सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं, सनातन गोस्वामी पाद ने खासकर भागवतामृतम लिखा है, एक रूपक की तरह है, एक नॉवेल की तरह लिखा गया है, लेकिन वस्तुतः वो नॉवेल नहीं है। क्यों? ना उन भगवत प्राप्ति जिनको हो गई है या भगवान के प्रति जिनका प्रेम है, उनके हृदय में कभी भी झूठ निवास नहीं करता है, इसलिए कोई झूठ मूठ की बातें या सांसारिक बातें उनके मन में नहीं आती है। तो जो कुछ भी सनातन गोस्वामी पाद भागवतामृत में लिखे हैं, उन गोप कुमार को पात्र बना करके एक उपन्यास जैसा रचना है, लेकिन वस्तुतः वो फैक्ट है। क्योंकि जैसे कोई जीव अनुभगवत प्राप्ति कर लेता है तो उनको न केवल इस लोक लोकांतर का ज्ञान हो जाता है, लेकिन लोकोत्तर उन भगवान की जो लीलाएं हैं, नित्य लीला, उन सब का ज्ञान से उनका हृदय भर जाता है। तो जीवों के हित के लिए वो कदाचित इस प्रकार एक उपन्यास के रूप में भी किताब लिखते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी एक ऐसा पुस्तक लिखा है जैव धर्म जो लिखा गया है, लेकिन वस्तु तो वो फैक्ट है, क्योंकि उनका हृदय में कोई छल कपट नहीं रह जाता है और समदर्शी होता है उनका हृदय। भक्तों का हृदय समदर्शी होने के कारण न तो उनका किसी से द्वेष रहता है, न कहीं ममता रहती है, उनकी ममता केवल मात्र भगवान में रहती है, इसलिए जो कुछ भी बात करते हैं वो भगवान के लिए बात करते हैं। उन भगवत प्राप्ति में जीव कैसे सरलता से आगे बढ़ सकते हैं या कैसे जीव को प्रेरित किया जाए इन उपन्यासों के द्वारा, उनको लिखते हैं, उसमें अपना कोई निजी स्वार्थ भक्तों का नहीं होता है, और न तो वो उपन्यास उनका फेमस हो जाए ऐसी भी इच्छा नहीं करते हैं। देखा जाता है श्री भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में कि उन्होंने इतना किताब लिखा, इतना प्रचार किया, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि अरे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, भजन करो, कोई नहीं सुनता इसको। क्या नहीं सुनते? उनकी जो आसक्ति रहती है वो एकमात्र आसक्ति, सामान्य लेखक जो होते हैं वो पुस्तक लिख करके उनको बहुत आशा अभिलाषा उन पुस्तक से होती है। वो सोचते हैं कि मेरा ये उपन्यास विख्यात हो जाए, मैं ख्यात हो जाऊं, मुझे कुछ मिले। इन भक्तों की कोई अपेक्षा नहीं होती है। खैर, मैं कह रहा था यहां इन प्रसंग के अनुसार कि इन सुयज्ञ के संबंधी लोग बहुत बहुत रुदन कर रहे थे। उन रुदन को आप सुने, पहले बता दिया इन्होंने किस प्रकार वो रोते थे, वो पहले बता दिया। प्रभुपाद जी लिखते कि इनका रोना धोना सुन करके यमराज जी आ गए, क्योंकि उनका वार्तालाप यमलोक पर्यंत सुनाई देता था। वास्तव में इस श्लोक में स्वयं उपागत यम, उसके अलावा और किसी के ऊपर बोलने का आवश्यकता नहीं, स्पष्ट है। कहते तत्र ह प्रेत बंधु नाम आश्रित परिदेवितम, उन सुयज्ञ के संबंधियों को खूब और रोते हुए देख करके कहते हैं उन बालक के रूप में यमराज जी वहां उपस्थित हुए और कुछ कहने लगे। एक बात ऊपर की लाइन में है, ह शब्द लिखा है, श्रील प्रभुपाद महाराज उनके अर्थ निश्चय के रूप में करते, निश्चय ही यमराज जी आए ऐसा कहते हैं। लेकिन एक आचार्य बता रहे हैं कि ये ह का अर्थ आश्चर्य है, लेकिन किसके विषय में आश्चर्य है? स्वयं यमराज जी को आना पड़ा, ये तो आश्चर्य का बात है। उनके पास बहुत दूत है, तो छुट्टी नहीं कर देते किसी को कभी भी, ताकि स्वयं यमराज जी को आना पड़े, है ना। तो कारण क्या है? स्वयं यम उपागत न बालक को भूतवा, उन बालक होकर के स्वयं यमराज जी को आने की क्या आवश्यकता पड़ी? श्री प्रभुपाद महाराज का तात्पर्य पूरा इनके ऊपर है ना। और वास्तव में इस श्लोक में वही है, यमराज जी भाई क्यों आए? तो इसके ऊपर श्री प्रभुपाद महाराज का तात्पर्य है। उन्होंने लिखा है कि देखिए, जब तक व्यक्ति की अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती है और उनका शरीर एकदम राख के ढेर में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक उस शरीर छोड़ने वाली आत्मा भटकती रहती है। उसका अर्थ यह है कि अग्नि दाह नहीं करने वाले जो समाज है, उनके पितर हमेशा उसी प्रकार प्रेत होकर के घूमते हैं, राइट कि नहीं? क्या लगता है आप लोग को? यह सत्य है। हमारी जो वैदिक प्रणाली है, वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के जो संस्कार है, उस संस्कार ऐसे अद्भुत है कि उन संस्कार के कारण जीव की कभी दुर्गति नहीं होती है, वो सदगति को प्राप्त हो रहे होते हैं, है ना। लेकिन किसी को गाड़ दिया है तो किसी को फेंक दिया है तो वो तो शरीर के ऊपर जीव मंडराता रहेगा। प्रभुपाद जी साक्षी है उनको, वो लिख रहे हैं। देखिए हमारे संस्कार कितने अद्भुत है, ये वैदिक प्रणाली कितनी अद्भुत प्रक्रिया है। दूसरी बात, अब देखिए गाड़ने के द्वारा तो कम से कम 2.5 फुट जमीन तो रोकेगा, 5 फुट जमीन तो रोकेगा सीधा, और 1-2 फुट इधर, है ना, तब भर जाएगा एक दिन सारा नहीं। और एक ही जगह में, शमशान में देखिए आप, एक ही जगह में वो जलाया जाता है सबको, कोई टेंशन नहीं है। खैर, इतनी एक लौकिक बात हो गई इसमें, तो यहां पर जो स्वयं यमराज जी को आना पड़ा, उनके ऊपर श्रील प्रभुपाद महाराज जी लिखते कि उनके संबंधियों का रोना सुनाई पड़ रहा था यमराज जी के ऑफिस में, पितर लोक में वो सुनाई पड़ रहा था। इसलिए यमराज जी आए। कुछ आचार्य उनके ऊपर कुछ बातें लिखे हैं, हम उनको भी थोड़ा श्रवण करेंगे। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते, स्वयं उपागत इति पुण्य जीवानाम निहारंत एव यम उपागमनम प्रायः। कहते प्रायः स्वयं अभवत इति के चित्त, और कहते हैं कोई कोई ये कहते हैं कि जो पुण्यवान लोग दिवंगत होते हैं उनका शरीर छूट जाता है तो वो यमपुरी को नहीं जाते हैं, ऐसा विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं। तो ये स्वयं उपागत इति के ऊपर वो लिख रहे हैं कि पुण्यवान जीवानाम निहारांत एव यमपुर गमनम प्राय असंभव इति के चित, संभव नहीं है उनके लिए। पुण्यवान जीव जब जाते हैं, श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में इस बात को घोषित किया है, उन पुण्यवान जीवों को लेने के लिए कदाचित यमराज जी आते हैं। अच्छा, राजा का क्या पुण्य था यह तो पता नहीं चलता है, लेकिन एक बात जरूर है कि उन पुण्यशाली लोग को वो प्राप्त हुए थे, क्यों ना उनकी करनी से। अब पाठ पढ़ते आ रहे हैं, जब से उपाख्यान उठाए, इतिहास उठाया हिरण्यकश्यपु ने, वहीं से उठाया था कि अपने शत्रु के सामने युद्ध करते हुए उशिनर प्रांत के सुयज्ञ नामक राजा मारा गया और उनके ओठ अपने दांतों से दबे हुए थे। उसका अर्थ यह है कि क्षत्रियों का दांत खट्टा कर रहा था, भाग करके नहीं मरा, युद्ध के मैदान में सामने उनका मृत्यु हो गया, और मृत्यु होने से उन पुण्यवान लोगों का, इस प्रकार का मृत्यु उन पुण्यवान लोगों का दर्शन कराने वाला होता है, ऐसा तो शास्त्र में लिखा गया। राजा लोग उन शत्रु के सामने जब मारे जाते हैं तो उनको ये बेनिफिट है, ये बताते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कोई लोग ये लिखते हैं कि देखिए यम पुर गमनम प्राय असंभवती इति के चित, कोई कोई कहते हैं के चित कार्त, कोई कोई ये कहते हैं कि वो जाते नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद महाराज जी लिखे कि हाँ भाई, तो इसीलिए उनको ट्रांसफर करने के लिए, वहीं से ट्रांसफर करने के लिए आए होंगे, भाई यहां से जाए वो जो कुछ भी हो। लेकिन ये पक्का बात है कि पुण्यवान जीव जो है वो यमराज जी के अंडर में नहीं जाते हैं। जो पापी लोग हैं उनकी खबर लेने के लिए यमराज जी रेडी रहते हैं, छठे स्कंद में आप प्रवचन सुने यमराज जी के दूतों का, है ना, वो तो विषय बीत गया, ये तो सप्तम है, शुरुआत में ही इन सारी बात को वहां बताया गया है कि उन पापी व्यक्ति के ही नियंता होते हैं यमराज जी, पुण्यवान व्यक्ति नहीं। सभी लोग के लिए यमराज जी नहीं आते हैं, या यमराज जी के सॉरी यमराज जी के दूत नहीं आते हैं। और यमराज जी को आया हुआ तो पहले ये दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट टाइम यहां। हाँ, दूत आते हैं, कई दूतों का गलती हो जाता है, ये सारी बातें सुनाई पड़ रही है। ऐसे तो कहीं विश्व में ऐसी घटना हुई है, उन घटना का निरूपण भी खूब किया है लोगों ने कि वस्तुतः जो लोग मूर्ख है, नितांत जो नास्तिक है, नहीं मानते इन सारी बातों को, शास्त्र की बातों को, तो वो लोग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। यमराज जी के दूतों की गलती हो गई, ऐसा होता है। जैसे अजामिल के विषय में तो प्रत्यक्ष है ये बात, गलती तो नहीं हुआ था लेकिन वापस गए। लेकिन ऐसी कई घटनाएं, खास करके गुजरात की घटना जो गुजरात समाचार में आई थी, तो प्रसंगोपात उनको मैं बता रहा हूं कि ये कोई एक मणिबा नामक, मणिबेन नामक कोई एक वृद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जब मर गई, शरीर उनका छूट गया, ये बहुत विख्यात घटना हुई थी और खूब चर्चा का विषय हुआ था और उनके ऊपर खूब विचार विमर्श भी लोगों का चला था। बहुत समय की पहले की बात है, करीबन लगभग 30 साल पूर्व की यह घटना है। तो मणिबेन गई और जाकर के फिर लौटी और उन्होंने जो बातचीत किया इसके लिए इन प्रेस वाले उनके पास चले गए थे। हकीकत क्या है इसमें, ये लिलिया की घटना है। लिलिया तो ये मां जी चल दिए तो उधर गए, तो बोलते तो गलत व्यक्ति को लेकर के आए हैं, तो गलती हो गई, जाओ जाओ जल्दी जाओ, बॉडी भी है। और तब तक ये लोग उनको बांध रहे थे, तो माता ने बोला मैं जिंदा हूं। जब उनको बांध रहे थे ले जाने के लिए, तो बोले मैं जिंदा हूं और मैंने साक्षात यमराज जी का दर्शन किया है। वो बोली यमराज जी ने वापस भेजा इन लोग को, जाओ जाओ गलत व्यक्ति। और वास्तव में उनके बगल में एक मणिबेन नामक दूसरी व्यक्ति भी थी। तो गलती हो जाता है कभी कभी, खैर जो कुछ भी हो, लेकिन यहां यमराज जी का आना एक विस्मय की बात है, इसलिए ह शब्द लगाया। न तत्र ह, एक आश्चर्य की बात है कि यमराज जी आए, तो उसके ऊपर चर्चा है। उन चर्चा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चित लिख करके बाद में कहते, तासाम एवं मध्य कश्यचित वैष्णव स्त्रिय तत्सामीप्याद्य यमदूते नेतुम अशक्यत्वात् तत्सामीप्य दूरीकरणार्थम स्वयं यम उपागत। तो कोई दूसरे लोग कहते हैं कि देखिए यमराज जी का आना किस लिए हुआ। ये जो सुंदर पॉइंट है, वो कहते हैं कि जो स्त्रियां रो रही थी या जो संबंधी उनके रो रहे थे, उनमें से कोई स्त्री वैष्णव थी और वैष्णव होने के कारण यमराज जी के दूत नहीं जा सकते थे। देखिए देखिए, हम लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको ये विचार करना चाहिए इन सारी बातों के ऊपर। एक सामान्य कोई वैष्णव बैठी हुई थी, ये कितना जप करती है इत्यादि तो नहीं है इसमें वर्णन, लेकिन वो वैष्णव थी और वैष्णव होने के नाते बोलते यमराज जी के दूत वहां जा नहीं सकते थे। देखिए साफ लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साफ लिखा था। इसलिए यमराज जी को आना पड़ा, भाई दूत नहीं जा सकते हैं और ये लोग को बुद्धि नहीं आएगा, जैसे प्रभुपाद जी के अनुसार ये लोग समझेंगे नहीं और संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए बॉडी को नहीं देंगे, जो भी कारण, लेकिन यमराज जी आए कहते हैं। तत्सामीप्य दूरीकरणार्थम स्वयं यम उपागत, उनको वहां से उन वैष्णवी को निकालने के लिए यमराज जी आ गए। अच्छा जो भी यमा दूरीकरण लिखा है, लेकिन कैसे दूरी करना है यह वो तो वो जाने, यमराज जी जाने। लेकिन ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, बालको भूत्व अन्य श्याम तत्र प्रवेशात प्रवेशम, अर्थात कहते हैं उन बालक के रूप में क्यों आए, ना बालक होकर के इसलिए आए कि वो जो रानीवास था वो अपने महल में लेके गई थी अपने पति के उन क्षत विक्षत शरीर को उठा करके वो ले गई महल में और वहां पर रुदन कर रही थी, रो रही थी खूब। तो वहां पर कोई पुरुष का जाना शक्य नहीं है। और ये लोग का शोक होना, ये लोग शोक से मुक्त हुए बगैर ये बॉडी नहीं देते थे, उनका शरीर जलाने के लिए नहीं देते थे दाह संस्कार के लिए। इसलिए यमराज जी कहते हैं कि वहां बालक होकर के आए, और बालक का दूसरा बात लिख रहे थे मधुरत्वात् कर्तु कर्तत्व कथन इति विस्मयावहत्वात् तत्व जिगृक्षो उत्पादन। और दूसरा, बालक जब कुछ तत्व ज्ञान देते हैं तो उन तत्व ज्ञान से व्यक्ति का जिज्ञासा जानने में और बढ़ जाता है। इतना बालक होकर के इतना ज्ञान रखता है, चाहे बूढ़े व्यक्ति को तो होता है ज्ञान, ऐसा सामान्य समाज में माना जाता है ना, ऐसा नहीं है वास्तव में। बूढ़े लोग को ज्ञान हो जाता है ऐसा बात है ही नहीं, लेकिन प्राय देखा जाता है कोई बच्चा अगर प्रवचन करता है तो व्यक्ति रुचि के साथ श्रवण करता है उनको। इसलिए बालक के रूप में स्वयं यमराज जी उपस्थित हुए, बालक का रूप लेकर के। क्यों? तो बोलते हैं तो जिग्रुक्षोत्पादन समर्थत्वाच, उनके हृदय में एक छाप उत्पन्न होती है जब बच्चा कोई प्रवचन करता है तो उन बड़े बूढ़े लोग जो अज्ञान के कारण रो रहे हैं और बच्चे को इतना ज्ञान देते हुए वो सुनते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। देखिए, याद कीजिए वो प्रसंग को, महाराज चित्रकेतु, उन चित्रकेतु के खूब ज्ञान दिया था, नारद अंगिरा खूब उनको उपदेश किया, लेकिन लगता था तिस पर भी महाराज का शोक दूर नहीं हो रहा था ना। फिर नारद जी ने कौतुक करके उन पुत्र को वापस लाए, उनकी बॉडी में कुछ अंजलि छिड़क करके बोले बेटा आज तुम्हारे संबंधी लोग, तुम्हारे माता पिता, तो वो लोग तुम्हारे लिए बहुत शोक कर रहे हैं, उनको तुम सुखी करो और तुम भी सुखी हो। इस राजा के एकलौते लड़के तुम हो तो सारा संपत्ति तुम्हारा है, उनको तुम भोगो और तुम भी आनंदित हो, उनको भी आनंदित करो। तब वो बालक का जो प्रवचन है, एक दिन मैंने कुछ श्लोक रखा था, तो उस प्रकार का एक प्रवचन जब सुना गया तो उनके बाद में तो देखिए उनके बाद में जो घटना होती है उनको वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद वहां पर। वो बोलते हैं कि इति उदित्य गतो जीव ज्ञातयस्तस्य ते तब विस्मिता ममुचु शोकम छित्वा आत्मस्नेह श्रृंखलाम। इस सारा उपदेश दे करके जब वापस उनका शरीर पृथ्वी पर गिर गया, वो चला गया ऐसा कहते, तो उनके जो ज्ञाति जन थे, उनके लिए जो शोक करने वाले व्यक्ति थे, संबंधी थे, तो अत्यंत विस्मिता, वो अत्यंत विस्मिता को प्राप्त हुए थे। बोले वाह क्या ज्ञान है, उन लोग का शोक दूर हो गया और जिन्होंने जहर दिया था वो रानियों के चित्त में संताप बढ़ गया, बोले और पश्चाताप भी हो रहा था, अरे अरे बहुत बड़ा गलती कर लिया हम लोग ने। उनके उपदेश से ये अंतर महाराज कहते उसी प्रकार वहां से निकल गए उन घर गृहस्थी के, जिस प्रकार उन एक हाथी उन कीच के सरोवर से जिस प्रकार निकलता है उस पर निकल करके चल दिए महाराज। वस्तुतः ये घर गृहस्थी जो कुछ भी है एक सांसारिक कीच है, ये भले हिरण्यकश्यप का यहां पर अपने परिवार जनों को समझाना है वो वस्तुतः बहुत अद्भुत प्रवचन है, इसलिए इनको श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास महाराज ने लिखा है और रखा है ताकि इससे कुछ वैराग्य प्राप्त हो। हम जैसा जो चित्त है हम लोग का जो चित्त है उसमें तनिक भी कितने भोग भोग करके भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है ना। और हमारे चित्त में वैराग्य उत्पन्न करना, बोले ना वैराग्य का क्या जरूरत है, भक्ति करने से वैराग्य आएगा, करे तब ना होगी, तब ना भक्ति है ना, तब वैराग्य आएगा ना। इसलिए कभी कभी वैराग्य की बातें भी इसमें बताई गई है, काफी वैराग्य की बातें श्रवण सुनने में आती है इसमें। क्यों ना, वो वैराग्य व्यक्ति को भक्ति में बढ़ाने वाले, उन सांसारिक उन भोगों से व्यक्ति विरक्त हो जाता है। इसलिए ऐसे कथानक को साथ में देना बहुत जरूरी है। केवल उपदेश व्यक्ति को लगता नहीं, ये देखा जाता है, उन उपदेश के साथ उसी प्रकार की घटनाओं का, इतिहास का वर्णन, जो घटना घट गई है उनका, या कोई रूपक के रूप में उपदेश साधु लोग देते रहते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, एक इतिहास है। और वस्तुतः आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार उन हिरण्यकश्यप के जो संबंधी थे उनके बाद में सांत्वना प्राप्त किया, बोला ठीक ठीक चलो छोड़ो, जो कुछ हुआ जो हो गया। यद्य भी उन लोग का आसुरी बुद्धि था, तीस पर भी वैराग्य भर गया है ना, और उनका संताप उनके हृदय से तिरोहित हो गया, देखा जाता है। यद्यपि वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, तीस पर भी वो भक्ति में जो सहयोग करने वाला वैराग्य है वो जरूरी भी है, बहुत जरूरी होता है। हम केवल भक्ति करते हैं और चित्त में वैराग्य भी नहीं है, खाना भी उतना ही खाते हैं या कुछ भी, या जो क्रिया करते हैं वो उतना ही क्रिया सब चालू रखते हैं, वैराग्य वैराग्य नहीं है ना, भक्ति हमारा चलता है, भक्ति नहीं है वो, इतर विरक्ति होना ही चाहिए। हा खाली का भक्ति नहीं चलती है, भक्ति परेश अनुभूति विरक्ति अन्यत्र, हा अन्यत्र विरक्ति होनी ही चाहिए। इसलिए देखा जाता है उन साधक भक्तों में कि जो लोग का चित्त संयमित नहीं होता है, चाहे गृहस्थ अनप्रस्थ कोई भी हो, जिनका चित्त संयमित नहीं होता है वो ठीक से अपनी साधना नहीं कर पाते। उनका कारण क्या है, उनका कारण या तो अपराध अथवा आसक्ति भोगों की। चक्कर गलत हो रहा है, गलत बोल रहे हैं, यही कारण है, अन्यथा कैसे ऐसा होता है, भक्ति नहीं कर सकते ऐसा बात होगा ही नहीं। जब इतना ज्ञान आ गया और इतना सब कुछ जान करके, कल जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना, कितना विशद वर्णन कर रहे थे, अद्भुत वर्णन कर रहे थे, कल का क्लास हमको बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। वस्तु तो वो वैराग्य की बात कर रहे थे, और भक्तों के लिए वैराग्य का आवश्यकता है। माला देखिए प्रभु जी क्या उपदेश कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, नाना प्रकार से बात कोट करते हुए, कोटेशन देते हुए वो समझा रहे थे। वो बहुत बहुत काम में लगता है उन साधकों के जीवन में, जो भक्ति साधक है या कोई भी साधक है, उन साधकों के जीवन में ये औषधि के समान काम करता है। विदुक्ति औषधि के समान काम करती है, इसलिए ऐसे उपाख्यानों के द्वारा हमारे चित्त में वैराग्य भरना चाहिए। अगर फिर भी वैराग्य नहीं भरता है तो फिर उपाय यही रहता है कि उन भगवान बुद्ध की तरह वैराग्य लाना बहुत आवश्यक है। कभी कभी मैं देखता हूं कई भक्तों के घर में भी भगवान का फोटो बहुत कम जगह में लगा है, बेड में तो लोग रखते ही नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई इसी में हमारा 30-35 साल बीता है और नाना जगह में मैं जाता हूं। तो एक एक वस्तु नोटिस किया था मैंने, भक्त अपने घर में बहुत कम फोटो लगाते, भगवान नहीं लगाना चाहे चारों ओर, और नहीं लगा सकते हैं भगवान का फोटो तो राम बोलो भाई राम, चार आदमी उठा करके जा रहे, ऐसा फोटो लगाना चाहिए, रोज देखना चाहिए उसको। बहुत आवश्यक है ये सारी बातें, बहुत बहुत जरूरी है। खैर तो इसी से इन उपाय, ये जो इतिहास बता रहे उन इतिहास से सुनिश्चित भक्तों की चित्त में वैराग्य अवश्य बढ़ेगा, एक बात। और दूसरी बात, भले ही वो असुर के मुख से है लेकिन जैसे अच्छी बातें कहीं से भी निकले उनको ले लेना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि देखो हम भक्ति करते हैं, इसमें जो विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर ने कोट किया है, अब वो कहते हैं कि देखो उन वैष्णवी को दूर करने के लिए या उनको वहां से हटाने के लिए यमराज जी का आगमन हुआ। अब किसी प्रकार हटाए ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा लिखे, कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना मत नहीं दिया है, के चित ऐसा लिखा है, कोई कोई लोग का यह कहना है, अपना परफेक्ट मत उन्होंने कोई नहीं दिया है कि मेरा मत है, ये नहीं बोले। तो जो कुछ भी है, एक दूसरा बात इससे उपदेश लेने लायक यही है कि हम भगवान की भक्ति करते तो हम लोग को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं सताना चाहिए, खास करके ये यमराज जी वाला भय वो होना ही नहीं चाहिए। एक दिन मैं कहीं किसी गांव में गया था प्रवचन के लिए, कुत्ते रो रहे थे, बोले 3 दिन से कुत्ते खूब रो रहे हैं, बोले कोई मरने वाला लगता है, गांव वालों को सब पता रहता है, क्योंकि यमराज जी के दूत जब आते हैं तो एक तो मरने वाला देखता है और कुत्ते देखते हैं, वो दूसरे कोई नहीं देखते, आदमी को नहीं दिखाई पड़ेगा, चूंकि नहीं तो आदमी वैराग्य में आ जाएगा वो तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब कुत्ते पुत्ते रो रहे थे तो बोलते प्रभु जी ये 3 दिन से कुत्ते थे, मतलब आपके घर में सत्संग हो रहा, आपको क्या दिक्कत है, 10 दिन रोए आपको कोई दिक्कत है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास तो सत्संग, आप पास जपमाला है, सब कुछ है, आपको क्या डर है, डर उनको है जो जप नहीं करते हैं। देखिए इसी बात को स्वयं यमराज जी अपने मुख से 6ठे स्कंद में ये बोला गया है, स्वयं यमराज जी बता रहे, कहते एवं विश्व शुद्ध जो भगवंत भगवती अनंत सर्वात्मना विद दत्त खलु भाव योगम ते में न दंड और हंति अद्य अमिशाम सात पातकम तत् तदीय कैसे है हंतुर्गायवाद। हा कहते हैं कि इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शुद्धि जिनके पास बुद्धि है, तो बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं ये विचार करके, इन समस्त बातों का विचार करके भगवान अनंत की भक्ति में लगे रहते हैं और सर्वात्मना अपनी समस्त इंद्रियों को वो भगवान में लगा देते हैं और इस प्रकार भगवान में भक्ति योग प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति ते में न दंडम अर्हति अत यत अमिशाम सात पातकम, कहते ये व्यक्ति मेरे दंड के पात्र नहीं रहेंगे, उनके जितने भी पाप है वो हरि नाम के द्वारा धुल जाते हैं, या उनकी भक्ति के कारण, भगवान में भक्ति के कारण धुल जाता है, यद्यपि कोई पाप हो भी जाता है। ये कहते हैं नश्यात पातकम यदि तत् अपि, फिर भी कहते हैं कि उनके हृदय में जो भक्ति है उन भक्ति के कारण उनका पाप ताप नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि परमिशन मिला है, ना, हो जाता है, वो पूर्व स्वभाव के कारण या बहुत बलवान स्वभाव होता है प्रकृति का, उनके कारण कुछ पाप हो गया तो वो पाप के लिए प्राश्चित जरूरी नहीं है, वहां पर प्राश्चित का बात चल रहा था, उसके लिए प्राश्चित जरूरत नहीं, उनका प्राश्चित अपने आप भक्ति से हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं ते देव सिद्ध परिगित पवित्र गाता ये साधव समदस्य भगवन प्रपन्ना तान नो उपसिद्धि हरेर हरेर गदया अभिगुप्ता नेशाम वयम न च वय प्रभवाम दंडे। देखिए साक्षात यमराज जी बोल रहे हैं, न क्या बोलते, ऐसे जो सिद्ध परिकर इस प्रकार जो सिद्धि प्राप्त कर लिए उनके बाद में तो बोलते हैं जो देवता लोग हैं गंधर्व लोग हैं उनका हमेशा उनके गुण की गाथा गाते रहते हैं उन भक्तों के, ये जो साधक लोग हैं समदर्शी होते हैं, समदर्शी होते हैं, उनको कोई अपना नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है, इसलिए अपने का पक्ष खींच करके कोई बातें नहीं की जाती है, या किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं होता है, भाई अपने वाले व्यक्ति के पक्ष लेकर के किसी के प्रति कटु वाक्य इत्यादि कह देने से वो पाप हो जाता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्यों, ना समदर्शी। तो ऐसे साधक बोलते हैं उन साधक समदर्शी होने के कारण यहां लिखते समदर्शो भगवत प्रपन्ना, इस प्रकार भगवान के शरणागत होकर के रहते बोले तान नो उपसिद्धती, उनको यहां मत लाओ, और तुम भी उनके निकट जाना नहीं भूल से, क्योंकि भगवान की गदा उनकी रक्षा हमेशा करती है, भगवान की गदा के द्वारा प्रक्षित नेशम वयम न च, वो मेरे दंड, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि उनको दंड दे पाऊं, केवल मैं ही नहीं साक्षात काल वयह वयह न प्रभवा, उन काल का भी साक्षात सामर्थ्य नहीं है कि उनको दंड प्रदान कर सके। देखिए यमराज तो निर्भय होकर के भजन करना चाहिए, एक बहुत बड़ी तसल्ली इससे मिलती है। भूत प्रेत का बात तो छोड़ दीजिए, या प्रेत वाला मामला इसलिए थोड़ा मैं कहता हूं, प्रीत प्रीत मनाओ, हमारे चित्त में एक भय उत्पन्न होता है, प्रियत भेद तो सवाल ही नहीं उठते, जहां पर काल की दाल भी नहीं गलती है, ऐसा साधन श्रील प्रभुपाद महाराज ने हमारे हाथ में रख दिया है, नित्य भगवान के गुणों का स्मरण करना, श्रवण करना, स्मरण करना, और नित्य उनके नाम का जप करना, अद्भुत साधन जब प्रभुपाद जी ने महाराज में रखा है, तो उस ओर से बिल्कुल निश्चिंत होकर के डट करके साधन करना चाहिए, लेकिन एक ख्याल रखना चाहिए उनके साथ साथ कि देखिए जो छोटे मोटे कुछ गलतियां हैं भूल है उनको सुधारना पड़ेगा। जैसे कुछ किसी का किताब पढ़ने के लिए लिया है तो हम सोच रहे भूल जाए तो अच्छा है किताब मेरे पास रहेगा, ना, ये दिखने में बहुत छोटी गलती है, या किसी का पक्षपात लेकर के दूसरे भक्त को कुछ आक्षेप करना, यस, ये आगे चल करके बहुत भारी अपराध में रूपांतरित हो जाएगा, साधक को ये सब केयरफुल साधना करना चाहिए। अभी छोटा सा गलती लगता है, जैसे कुछ सामान किसी का छोटा सा चोरी कर लेना, वो आगे जाकर के अपराध करने के लिए मजबूर कर देगा, और वो या तो भगवान का या भक्तों का अपराधी हो जाएगा। इसका ख्याल करते हुए व्यक्ति निर्भय होकर के साधन करे भक्तों की संगति में। श्रील प्रभुपाद महाराज ने सब कुछ दे दिया है, नित्य भक्तों का संग दे दिया है, सब कुछ दिया है, बताइए क्या कमी है। पांचों पांच साधन हमारी संस्था में है, कोई भी संस्था देख लीजिए जो ये पांचों पांच महासाधन कराती है, न जाने किस उन भगवान की भक्ति में किसका रुचि किस साधन में है, पांचों पांच साधन दिया इस महापुरुष ने।
कुछ बाकी नहीं रखा है। अगर कमी केवल है तो हमारी ओर से है, हम उनको सुष्ट से नहीं कर रहे, हमारा गलती है। तीन सारी बातों का उपदेश लेते हुए आज के इन जो उपदेश इससे मिलता है, वस्तु तो मैं मेरे लिए पाठ कर रहा हूं, तो जो कुछ भी उपदेश इससे मिलता है उनको ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे।